क्विंस पॉडकास्ट।
जो ये हिंदुस्तान नहीं होता तो ये उर्दू जुबान नहीं होती। किसी शायर की कलम से निकली ये लाइनें बताती हैं कि उर्दू की असली पहचान क्या है, उर्दू भाषा कहां से आई है। प्रतीक वाघमारे का आपको नमस्कार और आदाब। हम हिंदुस्तानियों के लबों पर उर्दू कई सदियों से रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उर्दू अपनी पहचान को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। पिछले दिनों हल्दीराम के पैकेट पर अरबी में लिखे कुछ शब्दों को उर्दू में बताकर नाराजगी जताई गई, जिसके बाद उर्दू के नाम पर एक बड़ा विरोध देखने को मिला। बात यहां पर नहीं रुकी, बल्कि हल्दीराम के खिलाफ सोशल मीडिया पर हैशटैग भी चलाए गए। जिस देश के सिनेमा के लिए कहा जाता है कि अगर उर्दू न होती तो बॉलीवुड का अंदाज़े बयां इतना खूबसूरत न होता, उसी भारत में वक्त वक्त पर उर्दू जुबां का विरोध भी देखने को मिलता है। उर्दू से नफरत की जाती है। किसी प्रोडक्ट के पैक पर उर्दू लिखा है तो वह विवादों का जरिया बन जाता है। कई जिलों के नाम इसलिए बदल दिए जाते हैं कि उनकी भाषा उर्दू होती है। कोई कहता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, कोई कहता है उर्दू पाकिस्तान की भाषा है और भारत की भाषा हिंदी है। तमाम तरह के विवादों और बहसों के बीच जानते हैं कि उर्दू भाषा का जन्म कहां से हुआ। उर्दू का जन्म 12वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रीय आम बोलचाल की भाषा से हुआ था। ये नई भाषा 12वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के गठजोड़ की एक नई नस्ल थी, जिसे गंगा जमुनी तहजीब का एक मिला हुआ रूप माना गया। हिंदुस्तान की तमाम रवायतों की रहनुमाई करने की वजह से इस भाषा को हिंदुस्तानी कहा गया। हिंदी के बड़े लेखक प्रेमचंद ने कहा है, जिस तरह अंग्रेजों की जबान अंग्रेजी, जापान की जापानी, ईरान की ईरानी, चीन की चीनी है, इसी तरह हिंदुस्तान की कौमी जबान को इसी वजन पर हिंदुस्तानी कहना मुनासिब ही नहीं बल्कि लाजमी है। उर्दू वक्त के साथ फली फूली, जो आम आवाम की जुबानों में फिट बैठती गई, क्योंकि ये आसानी से बोली और समझी जाने वाली भाषाओं में से एक है। इस भाषा में उर्दू के अलावा हिंदी भाषा के बड़े कवियों ने भी अपनी रचनाएं लिखी। प्रेमचंद इसका एक बड़ा उदाहरण हो सकते हैं। भारत में उर्दू को कई अलग अलग नामों से भी पुकारा गया है। इस लिस्ट में हिंदवी, हिंदुस्तानी, जबान हिंद, जबान दिल्ली, रेखता, गुजरी, दखनी, जबान उर्दू और जबान उर्दू ए मुआला जैसे अल्फाज शामिल हैं। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा वक्त में भारत में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो उर्दू को देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं और इसी लिपि से उर्दू सीखते हैं। 75% उर्दू के शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत और प्राकृत भाषा से और सिर्फ 25-30% फारसी और अरबी से है। उर्दू की पैदाइश पर लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और टिप्पणीकार सईद नकवी तफसील से बताते हैं।
उर्दू का मतलब है कैंप लैंग्वेज, यानी उर्दू कहते हैं पुरा। अगर आप उज़्बेकिस्तान जाएं तो वहाँ उर्दा कहते हैं कैंप को, यानी कैंटोनमेंट को, जहाँ फौज। तो तुर्की अफसर थे और प्यादे जो थे वो हिंदू थे या लोकल लोग थे। उन दोनों में गुफ्तगु कैसे हो, या तो जेस्चर से हो या टूटी फूटी ज़ुबान से हो। धीरे धीरे जुबान में अवधि, अगर वो अवध के इस नॉर्दर्न इंडिया में हुई तो उसमें अवध, अवधि, ब्रजभाषा, मैथिल, इनका असर धीरे धीरे जुबान पे आया। थोड़ी सी संस्कृत और थोड़ी सी पर्शियन। अगर तेलुगु में आप चले जाएं तो वहाँ के तेलंगाना का लहजा और हैदराबाद की जो उर्दू है उसमें तेलंगाना का लहजा है, तेलुगु का लहजा है बहुत ज़्यादा। पंजाब में आप जाइए तो वहाँ पंजाब का लहजा है। लहजे और इन्फ्लेक्शन में फ़र्क है, लेकिन ये उर्दू जो है ये हिंदू मुस्लिम सब ने मिल के यहाँ पर बनाई। इसमें हुकूमत उन दिनों में जब ये बनी, हुकूमत मुसलमान की ज़्यादा थी, ये मानने को हम तैयार हैं, लेकिन उर्दू का सबसे बड़ा प्रोज राइटर, पहला प्रोज राइटर, उसका नाम है पंडित रतन नाथ सरशार। यानी पंडित रतननाथ सरशार की जो किताबें हैं वो उर्दू का आईन, यानी उसूली उर्दू कैसे लिखी जाती है, और वो उसमें आपको मिलता है। उर्दू के बहुत बड़े बड़े शायर हैं जो कि फारसी और उर्दू के, जो हिंदू हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम का फ़र्क भी गलत है। हाँ, धीरे 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 जब वो लोग ऊपर आ रहे हैं इख्तदार में, पावर में, जिनके यहाँ जो कि कल्चरली इतने इमेंसिपेटेड नहीं थे, तो जाहिर है ना वो हिंदी और ना उर्दू, दोनों लिटरेचर से और दोनों कल्चर से ना आशना है, और धीरे धीरे वो सीख रहे हैं। एक तीसरा कल्चर निकल रहा है जो कि पॉपुलर है, किसी हद तक जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो उसको वल्गर कहेंगे, लेकिन अब वही है। धीरे धीरे यही भाषा सिनेमा में आ रही है, क्योंकि ये कहना भी उसको उर्दू यहीं की जुबान, एक ही ज़ुबान है जो यहीं बनी, इसका कोई इम्पोर्टेंट कंटेंट इसके अंदर नहीं है। जितने उर्दू के शायर हुए हैं, जितने उर्दू के लिखने वाले हैं, और उर्दू ज़ुबान का को जिस तरह से फ़रोग मिला है, वो सब यहीं हिंदुस्तान के अलावा ये कहीं नहीं बोली जाती, और अगर बाहर गई है तो डायस्पोरा के ज़रिए गई है। उसमें अब आपको कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ जहाँ यहाँ से लोग गए हैं, दुबई, अबू धाबी, जहाँ जहाँ यहाँ के लोग गए हैं, वो अपने अपने मुशायरे करते हैं, अपने जलसे करते हैं उर्दू में। तो उर्दू इब्तिदा यही हुई और उसकी इंतहा भी यही है।
बात उर्दू के विवाद को लेकर करें तो भारत में उर्दू को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। पिछले कुछ सालों में देश के कई राज्यों में ऐसे इलाकों का नाम बदलने की मांग हुई जो उर्दू भाषा में थे। कई इलाकों के तो नाम भी बदले जा चुके हैं। इस तरह के फैसले लेने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे है। यहाँ अब तक इलाहाबाद, फैजाबाद जैसे जिलों के नाम बदले गए हैं। इसके अलावा कई और जिलों के नामों को बदलने की मांग हो रही है। जिस सूबे उत्तर प्रदेश में इस तरह के नाम बदलने वाले फैसले सबसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के साथ उर्दू भी है। इसके अलावा मौजूदा वक्त में उर्दू भाषा से संबंधित विवाद जिस चैनल के रिपोर्टर के जरिए शुरू हुआ है, उस चैनल पर बिंदास बोल जैसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। उर्दू के बड़े शायर मुनव्वर राना ने लिखा है, हर एक आवाज उर्दू को फरियादी बताती है, ये पगली फिर भी खुद को अब तक शहजादी बताती है। उर्दू के विरोध पर सईद नकवी भी अपने अंदाज में कहते हैं,
मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो रहा है। बड़ी ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि एक तरफ तो ऐसा लगता है कि उर्दू का जवाल हुआ है, उर्दू कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उर्दू को, उर्दू शायरी, उर्दू कविता, उर्दू लिटरेचर, उर्दू शॉर्ट स्टोरीज, उर्दू नॉवेल्स और ख़ासकर उर्दू गज़ल इतनी ज़्यादा मकबूल और इतनी पॉपुलर हुई है कि जो पहले कभी नहीं थी। और ये सब ये लोग ये समझा गया था कि उर्दू अब ऑफिशियल ज़ुबान नहीं रही, उसकी जगह हिंदी ऑफिशियल ज़ुबान हो गई है, लेकिन ऑफिशियल ज़ुबान महज डी जूरे है, डी फैक्टो तो हिंदुस्तान भर में हिंदी भी नहीं है। यानी आपने देखा कि अभी 1967 में लैंग्वेज रायट्स हो गए थे तमिलनाडु में, तो ये लैंग्वेज का मामला ज़रा सा उलझा हुआ है, लेकिन उर्दू और हिंदी में बहुत कम फ़र्क है। लेकिन दरअसल जो भाषा बोलते हैं लोग उसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदी वाले वही बात, यानी हिंदी और उर्दू वाले जब बात करते हैं तो उर्दू वाला हो सकता है कि एक फारसी का लफ्ज़ ज़्यादा बोल जाए, और हिंदी वाला हो सकता है कि एक संस्कृत का लफ्ज़ ज़्यादा बोल जाए, लेकिन दोनों ऑन बैलेंस एक ही ज़ुबानी हैं। हिंदुस्तान की लिंगुआ फ्रैंका यानि जिसको कि हिंदुस्तान की ज़ुबान आप कहिए, वो है जो बॉलीवुड में बोली जाती है, जो कि बॉम्बे सिनेमा में बोली जाती है, वो संगम है उर्दू और हिंदी का, ये दोनों एक दूसरे का टकराव नहीं है। हाँ, अगर आप ये हुआ था कि पार्टीशन के बाद उर्दू पाकिस्तान की नेशनल ज़ुबान हो गई, लेकिन नेशनल ज़ुबान वहाँ भी डी जूरे है, दरअसल लोग पंजाबी में बात करते हैं, पश्तो में बात करते हैं, सिंधी में बात करते हैं, और महल वो मुहाजर का इलाका है कराची में, जहाँ पे कि उर्दू जो बोली जाती है अवध वाली वो बोली जाती है। लेकिन कोई ये एक हिस्टोरिकल चेंजेस इस सबकॉन्टिनेंट में जितने आए उसका असर उर्दू पे पड़ा, क्योंकि जोश मलियाबादी एक शायर हैं जो थे 20वीं सदी के बहुत बड़े शायर, वो कहते थे जो ज़ुबान रोटी नहीं देगी वो मर जाएगी। तो उर्दू अगर रोटी नहीं देगी तो नहीं चल रही है, उर्दू का चैनल कहाँ है? हिंदी के चैनल हैं जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो नहीं, उर्दू हिंदी में कोई रकाबत नहीं है। हाँ, उर्दू नेशनल लैंग्वेज उस तरह से नहीं है जैसे कि हिंदी है।
आजकल आलम यह है कि एक राष्ट्र एक भाषा का नारा लग रहा है, ये हिंदी भाषा के संबंध में है। सितंबर 2019 में हिंदी दिवस के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी स्पीच में एक राष्ट्र और एक भाषा का पैटर्न देश में लागू करके हिंदी को अपनाने की बात कही थी। गृहमंत्री द्वारा कही गई इस बात पर देश के कई हिस्सों में विरोध किया गया, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य बहुत अधिक नाराज दिखे थे। तमाम तरह के विरोध के बाद गृहमंत्री ने सफाई देते हुए कहा था कि मैंने हिंदी को थोपने की बात नहीं की थी, बल्कि ये कहा था कि अपनी मातृभाषा सीखने के बाद लोगों को हिंदी भी सीखनी चाहिए। इस तरह से अगर हम देखें तो भारत में कोई भी एक भाषा कायम नहीं हो सकती, क्योंकि इस देश में हर तरह की भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। उर्दू सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई संस्कृति के मिठास का एक रंग है। अगर हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक उर्दू का विरोध करता है तो सीधे तौर पर वो भारतीयता का विरोध करता है। उर्दू एक ऐसी जुबान है जिसकी खुशबू नहीं होगी तो हर हवा फीकी हो जाएगी। किसी शायर ने कहा कि सलीके से जो हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताएं। इस पॉडकास्ट में मेरी मदद मोहम्मद साकिब मजीद ने की है। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।